और फिर वहां से वो किसी एक जानवर को पकड़ता है। उसमें उदाहरण भैंस का दिया था कि वो भैंस को पकड़ता है और फिर एक बार में उसको नष्ट कर देता है। और ये आदत होती है शेर की कि वो किसी भी शिकार को मार करके सबसे पहले उसका रक्तपान कर लेता है, उसका खून पी जाता है, और उसके बाद फिर उस जानवर के कलेवर को मुंह में पकड़कर ऐसे पीठ के ऊपर लाद लेता है। और आप कल्पना करो उसमें कितनी शक्ति होगी कि उस 12 फुट ऊंची दीवार को फिर से ऐसे छलांग मार करके भैंस सहित उस पार कूद जाता है। अब ये बात कितनी सत्य है, इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। वहाँ गिरनार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा करके और फिर वहाँ के जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किताब में पुस्तकों में अतिशयोक्ति भी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ तो ताकत रही होगी उसमें, शेर में। वो साधारण तो हो नहीं सकता। और शार्दुल की पहचान ये है कि जिस शेर के बाल पूरे आगे की तरफ आते हो, पीछे ना जाए, वो शार्दुल होता है। और बाकी जो शेर होते हैं उनके बाल पीछे की तरफ भी लहराते हैं ऐसे अस्त व्यस्त, मतलब ये चेहरे के पास तो बाल रहेंगे। बब्बर सिंह के, बब्बर शेर बोलते हैं उसको, बालों वाला शेर। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ये इतना सब वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं कि इतना खूंखार खतरनाक प्राणी जब सिंहस्य कमे पड़िदम सारंगम, सारंग का अर्थ होता है हिरण, जब इतना खतरनाक प्राणी हिरण को पकड़ लेता होगा तब न रख दे को भी, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सिंहस्य कमे पड़िदम यानी शेर की चपेट में आए हुए, शेर के चंगुल में फंसे हुए हिरण की जिस प्रकार कोई रक्षा नहीं कर सकता, तह उसी प्रकार मिच्छुनाय गहिदम जीवम, मृत्यु द्वारा गहितम गृहित पकड़े गए जीव को भी को भी न रख दे, कोई भी नहीं बचा सकता। मृत्यु जिसको पकड़ ले उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। सती सावित्री की कथा आती है अन्य मतों में, उसने अपने सतीत्व के प्रभाव से यमराज से पति को छुड़ा लिया था। सत्यवान सावित्री कथा है ना, छुड़ा लिया था, लेकिन वो कथा है और उसका कोई प्रतीकार्थ निकालो तो फिर आध्यात्मिक अर्थ भी आप निकाल सकते हैं। है ऐसा, भारत के जितनी भी कथानक हैं, जितनी कथाएं हैं, जितने उपाख्यान हैं, व्याख्यान हैं, उन सब दृष्टांतों में आध्यात्मिकता है। उसको सिर्फ स्टोरी नहीं समझना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि भारत की कथाओं में वास्तविकता खोजोगे तो लगेगा कि पता नहीं किस पागल ने ये कथा लिखी है, क्योंकि बहुत ही उठपटांग उसमें बातें मिलेंगी आपको। और जब उसका रहस्य निकालोगे, प्रतीक निकालोगे कि भाई ये किसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है, ये किसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है, ये और किसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है, जैसे अर्जुन का रथ है, कृष्ण सारथी है और वो 5 घोड़े उसको खींच रहे हैं, तो उसका प्रतीकार्थ क्या निकालोगे? 5 इंद्रियां हैं, 1 मन है, आत्मा है, और फिर उसके बाद और जितना उसका विस्तार करना हो, जितनी गहराई में जाना हो वहां तक जा सकते हो। तो वहां पर जो अर्थ है वो वैसा अर्थ नहीं है जैसा यहां बता रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं आचार्य कि मरते हुए प्राणी को कोई बचा नहीं सकता। तो सत्यवान को सावित्री ने मरते हुए बचा लिया था, उसका आप वैसा अर्थ मत निकालना, उसका प्रतीकार्थ निकालना। प्रतीकार्थ क्या निकालोगे? जिनवाणी को सती का रूपक दे दीजिए और सत्यवान को जीव समझ लो और यमराज को मरण। तो अब क्या करना? बचाने का मतलब क्या है? आयु तो हर किसी की पूर्ण होने वाली है। बचाने का मतलब यह है कि जिनवाणी की शरण में आने वाला कुमरण को प्राप्त नहीं होता, संलेखना को प्राप्त होता है, और संलेखना कोई ऐसा मरण नहीं है। एक अपेक्षा से मरण है, लेकिन अगर संलेखना अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, भले उसका नाम पंडित पंडित मरण हो, लेकिन उसका अर्थ निर्वाण है, निर्वाण है, और उसको मुक्ति भी कहते हैं। और मुक्ति का मतलब क्या? यम के चंगुल से छुड़ा लेना। आ रहा है समझ में? मृत्यु से बचा लेना। मृत्यु से बचाने का मतलब कौन बचे हैं मृत्यु से, पहले ये बताओ, फिर आगे चर्चा करें। कौन बचे हैं? केवल एक परमेष्ठी, सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान की भी आयु पूर्ण होती है, तभी तो अरहंत पद शाश्वत पद नहीं है। शाश्वत पद केवल एक है, सिद्ध पद। तो सिद्ध भगवान ही काल जयी है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन किसने बचाया उनको मृत्यु से? जिन वाणी ने। तो फिर ऐसा रूपक निकाल करके आप अर्थ घटित करो, किसी भी कहीं भी रामायण में निकालो आप। बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर निकाला, एक बहुत बढ़िया गीत लिखा बनारसी दास जी ने। कैसे लिखा? तो बनारसी दास जी और फिर गोस्वामी तुलसीदास, ये दोनों मित्र थे। और दोनों मित्र थे तो क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस पूर्ण की तो वो जानते थे कि मेरा मित्र बनारसी दास श्वेतांबर है, जैन है, कवि है। तो उनने वहां भेजी कि देख लो भाई कविता ठीक लिखी कि कैसी लिखी। उनने पढ़ी पूरी कविता, पूरी रामचरितमानस पढ़ करके फिर बनारसी दास जी को काव्य कला तो पसंद आई तुलसीदास जी की। मान्यताओं में भेद था, मान्यताओं में जमीन आसमान का अंतर था। जैन मान्यता कुछ और कहती है, वो मान्यता कुछ और कहती है। और रामचरितमानस में ब्राह्मणवाद का भी काफी समर्थन है। और छोटे से बड़े हर प्राणी को उसमें महत्व दिया गया, व्यावहारिक जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया। इन सब बातों को पढ़ करके बनारसी दास जी ने फिर उसी कथा को जैनत्व में घटित करके एक आध्यात्मिक भजन बना करके तुलसीदास जी के पास भेज दिया। वो भजन हमने एक बार गाया था नागपुर में जब राम कथा हुई थी, तो फिर वहां पर अंतिम दिन हमने वो भजन गाया। विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। फिर राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है, अहिरावण कौन है, सब दुनिया भर का उन्होंने वर्णन किया। पूरे अपनी आत्मा में सारी चीजें हैं। और वो संग्राम जो चल रहा है वो भी मोह और जीव। मोहनी कर्म जो है वो सेनापति है, और जीव जो है वो बेचारा इस तरफ इस पक्ष का है, मतलब अपने पक्ष वाला। तो फिर ये शत्रु पक्ष जो है वो कर्मों का पक्ष है, इनका युद्ध चल रहा है। और अंत में इस युद्ध को जीत करके जीव रूपी राजा राम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसा सुंदर उन्होंने दृष्टांत घटित किया। तो फिर इस भजन को पढ़कर के तुलसीदास इतने गदगद हो गए कि फिर उनको लगा कि अरे बनारसी दास जी ने इतने मतलब आध्यात्मिक जैनत्व में घटित कर दी हमारी रामचरितमानस। तब फिर उनकी भी भावना हुई कि हम भी जैन धर्म का कुछ बहुमान करें। तब फिर तुलसीदास ने पहली बार पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक गीत लिखा है। वो गीत अभी हमारे पास रखा हुआ है, उसकी हमने लय धुन कोई तैयार नहीं की, लेकिन सिर्फ हमने देखा था कि ये तुलसीदास का लिखा हुआ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक भजन है। तो क्या है कि जितनी कथाएं हैं उसका अगर आध्यात्मिक रूपक निकालो तो फिर अर्थ निकल आता है, और आध्यात्मिक न रूप निकालने पर अलग अलग संप्रदायों के विवाद खड़े होते हैं। वो लड़ने मरने को तैयार है कि नहीं, हमारे यहां तो बलि चढ़ाने को लिखा है तो हम तो चढ़ाएंगे, बोले इसके बिना थोड़ी चलता है धर्म। अब बलि किसकी चढ़ाना है? उस आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझा और बेचारे निर्दोष प्राणियों को मारना चालू कर दिया। किसकी चढ़ाना है बलि? बलिदान त्याग किसका करना है? विषय और कषाय रूपी पशुओं का। अपने अंदर पशुता है कि नहीं? जितनी विषय कषायों की अधिकता होगी उतनी ही मानवता में कमी होगी, और उसी को तो पशुता कहेंगे। तो उनकी बलि चढ़ाने की बात है। अब समझ न पाने के कारण लोगों ने फिर मान्यताएं चला दी और फिर सब अलग अलग प्रकार से वो करने लगे। जैनत तुमने जिनेन्द्र वर्णी जी ने एक प्रभुवाणी नाम की छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने हर मत की हर मान्यता को साद्वाद नय से जैनत्व की अपेक्षा से सही सिद्ध किया। क्या कहा उन्होंने? ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं खड़कता, ये सर्वथा असत्य नहीं है, कोई बात सर्वथा असत्य नहीं होती। उन्होंने सिद्ध किया कि ये सही है। कैसे सही है? निश्चय नय से किसी भी पर्याय में जीव हो वो ईश्वर है कि नहीं। अप्पा सो परम अप्पा, निश्चय से। नियमसार ग्रंथ में एक गाथा आती है, सबवे सिद्ध समाणा शुद्ध नया संसिधि जीवा, संसार के जितने जीव हैं वो सब शुद्ध नय की अपेक्षा सिद्ध के समान है। अब देखो नयों का मिश्रण करके कैसा उस वाक्य को घटित किया उन्होंने। तो वायु का एक जीव भी निश्चय नय से परमात्मा है। अब जब हवा बहती है तो पत्ते हिलते हैं, तो वो पत्ते जो हिले हैं ईश्वर के बिना हिले हैं क्या? नहीं आया समझ में? ज्यादा जटिल हो गया। हवा चल रही है, अब हवा क्या है? भले उसका उसकी अवगाहना कितनी भी हो, लेकिन ढेर सारे वायु का एक जीव रहते हैं ना हवा को शरीर बना करके। प्रकृति के कण कण में जीवन है, याद रखना, प्रकृति के कण कण में जीवन है। ये कैसे घटित करोगे? माने पानी में भी जीव रहते हैं, जल कायिक। जल को अपना शरीर बना करके जीने वाले जीवों को जल कायिक कहते हैं। वनस्पति को अपना शरीर बनाकर जीने वालों को वनस्पति कायिक कहते हैं। इसी प्रकार सारे जीवन। तो हवा जब बहती है तो फिर पत्ते हिलते हैं। अब उस हवा में भी अगर उस दृष्टि से विचार करो तो जीव है, जीवन है, और वो जीव निश्चय से अप्पा सो परमप्पा, परमात्मा है। तो परमात्मा के बिना पत्ता हिला गया? तो इस प्रकार अगर नए विवक्षा से घटित करो, लेकिन क्या है कि जब सिद्धांत में अपन जाते हैं तो फिर सिद्धांत में जहां पर जो बात विवक्षित होती है उसको उसी रूप में लेना पड़ता है। हर जगह कोई भी नए लगा करके सब काम बिगाड़ नहीं सकते अपन। बिल्कुल ठीक है, संसार भटकना चाहे तो फिर आत्मा के हाथ में है, जितना भटकना भटको, बिल्कुल पूरी छूट, खुली छूट है। और अब निर्वाण प्राप्त करना है तो वहां लग जाओ। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं भवति इति स्वयंभू, खुद जैसा होना चाहे हो सकता है, तो इसलिए स्वतंत्र है। तो इस अपेक्षाओं से अपन घटित कर सकते हैं, पर विवाद मिटाने के लिए घटित करना अच्छी बात है। और अगर एक पक्ष पकड़ करके विवाद करो तो अच्छी बात नहीं है। जैसे व्यवहार व्यवहार का पक्ष पकड़ने वाले भी संसार में डूब जाते हैं, और अकेले निश्चय को पकड़ने वाले भी संसार में भ्रमण करते हैं। व्यवहार अवलंबी देवगति में तो चले जाते हैं, लेकिन रत्नत्रय को प्राप्त न कर पाने के कारण, क्योंकि एक पक्ष को पकड़ा, एक पक्ष को पकड़ने के कारण सम्यक दृष्टि नहीं बन पाया। सम्यक दृष्टि किसको कहेगी? जिसकी दृष्टि, दोनों आंखें ठीक ठाक हो। शब्दार्थ क्या निकलेगा? जिसकी द्रव्यार्थिक नए भी जो सही लगाता हो, पर्यायार्थिक भी ठीक ठाक लगाता हो, निश्चय का भी अर्थ सही प्रकटता हो और व्यवहार को भी सही समझता हो, सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि है ना, जो अधूरा देखता है, द्रव्यार्थिक से देखेगा या फिर पर्यायार्थिक से देखेगा, निश्चय से या व्यवहार से, माने एक तरफा जिसका दृष्टिकोण होता है, मिथ्या दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में फिर संसार से पार नहीं लग सकता, क्योंकि संसार का रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा है। एक आंख वाला कहीं किसी गड्ढे में गिर जाए, दोनों आंखें बराबर हो, व्यवस्थित हो, तो फिर वो बच बच करके आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जिनवाणी की शरण जरूरी है। वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र के 14वें काव्य में कहा है, प्रच्छन्न खल्वयमगमयै रंधकारै समन्तात् पन्थामुक्तेः स्तपुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखदो देवतत्त्वावभासी यद्यग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्न दीप, बहुत ही सुंदर श्लोक। आचार्य कहते हैं कि ये जो रास्ता है अगमय अंधकार प्रच्छन्न मुक्ते पंथा, मोक्ष का जो रास्ता है, मुक्ति का मार्ग, सिद्धालय तक जाने वाला जो रास्ता है वह अंधकार से व्याप्त है। रास्ते में घना अंधेरा छाया हुआ है। काय का अंधेरा? अघमय ही अंधकार ही, पाप रूपी अंधेरा। चारों तरफ जगत में पाप ही पाप है, पंच पापों से जगत भरा हुआ है। अब उसके वहां से बीच से रास्ता जा रहा है, निकलना है आपको, वहां तक जाना है अपनी मंजिल तक, कैसे जाओगे? और कैसा है? अगाधई क्लेश गरते ही स्थपुटित पद, एक एक कदम पर उबड़ खाबड़ है। कष्ट रूपी गड्ढे सारे रास्ते में है, एमपी जैसे रास्ता है, महाराष्ट्र और गुजरात जैसा रास्ता नहीं मोक्ष का मार्ग। मतलब गहरे गहरे गड्ढे हैं, दुख रूपी गड्ढे। तत् इसलिए तत्वावभासी कह सुख तो तत्व्रजति, बोले कि तत्व को समझने वाला भी उस रास्ते को कौन आसानी से पार कर सकता है? तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उस रास्ते को आसानी से पार नहीं कर सकता, क्योंकि घना अंधेरा और गड्ढे हैं। क्या करोगे? लेकिन पार कर जाते हैं तत्वावभासी लोग। कैसे करते हैं? तो आचार्य कहते हैं, यद्यग्रे ग्रे भवति न भवत भारती रत्न दीप, जिनवाणी रूपी रत्न दीपक आगे आगे रहता है, इसलिए वो गड्ढे दिखते जाते हैं। और दोनों दृष्टियां बिल्कुल बराबर, निश्चय व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक पर्याय ने, ये दोनों आंखें उसकी ठीक रहती है जिनवाणी की कृपा से, इसलिए वो गड्ढे में नहीं गिरता और अंधकार से भी भ्रमित नहीं होता, पापों में भी नहीं उलझता और कष्टों में भी नहीं पड़ता, और संभल कर निकल जाता है, मोक्ष रूपी महल तक पहुंच जाता है। बस यही बात है। तो दृष्टांतों का मर्म अपन समझ लें। समय सार में भी एक से बढ़कर एक दृष्टांत है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत धोबी का, कि धोबी के यहां पर जब वो कपड़े लेने गया तो उसने कपड़े दिए, ये बोलता है कि मेरे तो नहीं है, अरे बोलते कि भूल हो गई, बोले, और वो धोबी तुरंत उधर जाता है। लेकिन जैसे ही जाता रहता है वो कि भाई मैं अब भी लेकर के आ रहा हूं, बोले किसके यहां दे दिए तूने? वो बोलते कि तुम्हारे पड़ोसी ले गया। तो वो अदल बदल हो गई, मतलब भूल से जल्दी जल्दी में अदला बदली हो गई कपड़ों की, तो बोले कि फिर तुम रहने दो, मैं उससे ले लूंगा, बोले, और ये मैं उसको दे दूंगा, और चला जाता है। और उसके बाद पड़ोसी के घर जाता है, पत्नी दरवाज़ा खोलती है, फिर पूछते हैं कि क्यों, कहाँ गए वो? बोले कि अभी विश्राम कर रहे हैं। तो बोले अच्छा, इतनी देर तक विश्राम कर रहे हैं, बुलाओ। बोले बोले आप ही चले जाइए। तो वो अंदर चले जाते हैं, अंदर जा करके देखते हैं तो खुरा कर रहे थे, बिल्कुल घुर्राटे भर रहे थे गहरी नींद में। तो वो जो चद्दर था जिसको ओढ़ कर वो सो रहे थे, उस चद्दर को इसने ऐसे खींचा, क्योंकि जगाने के विचित्र ढंग है संसार में कोई पानी छिड़क करके जगाता है, कोई फैन लाइट ऑन करके फैन ऑफ करके जगा देता है, और कुछ लोग तो इतना खतरनाक जगाते हैं नाक बंद कर देते हैं, जग नहीं पड़ता हर हालत में इससे आगे कोई दूसरा इलाज नहीं है सोने वाले का, नाक बंद करो तो हर हालत में उसको जागृत होना पड़ता। तो इसने क्या किया, ठंड के दिन थे, वो चद्दर एकदम खींच करके अलग कर दिया। अब एकदम ऐसे उठ करके वो जागृत हुआ, बोले कि क्या करते हो? बोले तो बोले कि दोस्त ये चद्दर मेरा है। बोले कि कैसे हो सकता है तुम्हारा, मैं अभी खुद इसको वहां से वॉशिंग करा करके लाया हूँ धोबी के यहाँ से, कल ही शाम को लेकर गया हूँ। बोले कि नहीं तेरा नहीं है ये, देख। फिर उसके बाद उसको एकदम विश्वास नहीं होता कि ये मेरा नहीं है, जैसे सामान्य मनुष्यों को विश्वास नहीं होता कि शरीर मेरा नहीं है। तो फिर वो फिर चिन्ह बताता है। चिन्ह कौन से बताता है? बोले कि ये देख, ये जो किनारी है ये तेरे चद्दर में ऐसी किनारी थी। वो ऐसे देखता है, थोड़ा सा ऐसे आंखों को मलता है, नींद एकदम नहीं जाती ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो आंखों को मलता है और फिर ऐसे देखता है। बोले कि यार बात तो सही है, और भी चिन्ह बताता है, तो उन चिन्हों से वो पहचान लेता है कि चद्दर मेरा नहीं है। तो फिर बोलता है कि ठीक है, ये चद्दर तो तुम्हारा ही होगा। फिर मेरा चद्दर? बोले कि चिंता मत कर, मैं लेकर के आऊँ। फिर वो झोली में से निकाल करके बोलता है, ये देखिए तेरा चद्दर। वो पहचान लेता है अपने चिन्हों से, है ना तेरा चद्दर। बोले कि हाँ। ये दृष्टांत दिया अमृतचंद स्वामी ने। अब उसका दार्ष्टांत क्या है, सारांश? अनादिकाल से ये मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान रूपी चद्दर को ओढ़कर चार गतियों में सोया पड़ा है। इसको ध्यान से सुनना आप, है ना, आंख बंद करके, मुंह भी साथ में बंद रखते हुए इसको सुनना, बड़ा आनंद आएगा। तो क्या होता है कि वो जब सोता रहता है तो फिर उसको पता नहीं है कि मैं कौन सी चद्दर ओढ़ करके सो रहा हूं, और ये अज्ञान शरीर को जीव समझने रूप अज्ञान। अब क्या होता है कि गुरु आ करके, देखो दृष्टांत में पूरा एक एक शब्द घटित नहीं करना, उसका जो सार है वो पकड़ना। गुरु आते हैं, गुरु आकर के उसको पहले तो आवाज लगाते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती ओम नमः सिद्धेभ्यः में। फिर बोलते हैं हे भव्य प्राणी, तब भी नींद नहीं खुलती। फिर उसको और दूसरे तरीके से समझाते हैं, जैसे वो चद्दर खींचता है ना वो जगाने के लिए, उसी प्रकार गुरु महाराज को ऐसा दृष्टांत दे करके उसके दिमाग को खींचते हैं। तब फिर वो बोलता है कि क्या कर रहे हैं महाराज, आपने तो सब त्याग कर दिया और मुझे भी पकड़कर अपने जैसा बनाना चाहते, अपनी फौज बढ़ाना चाहते। बोले तो गुरु बोलते हैं कि नहीं, हमें किस तुमसे लड़ाई नहीं करनी, गृहस्थ और साधु में कोई विवाद नहीं है। बोले दोनों का एक शत्रु है। बोले मेरा भी शत्रु कर्म है और तेरा भी शत्रु कर्म है। तू इस बात को समझ नहीं पा रहा है, तू आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करके जीवन को खराब कर रहा है, कषाय कर रहा है, वैर बांध रहा है, और जन्म जन्मांतरों तक तेरा वो वैर तुझे कष्ट देने वाला है। इस कषाय को छोड़ और देख, जिस शरीर को ओढ़ करके तू बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तू समझ रहा है कि ये तेरा चद्दर है, लेकिन नहीं, ये पराया है। तेरा चद्दर तो ये है, देख। ऐसे करके अंदर से जिनवाणी से बताते हैं कि तेरा चद्दर तो ये चैतन्य स्वरूप, तेरा जो जीव है, जो शुद्ध चैतन्य निराकुल अखंडित मनाकुलम ज्वलद अनंत बंतर बहि मह परम मस्तु नह सहज मुद्विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेक रस मुल्लसल लवण खिल्ल लीलायतम। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि देख, इसकी पहचान ये है। तेरी चीज की पहचान क्या है कि जिस प्रकार एक नमक की डली है, छोटा सा पीस है नमक का, मीठू, ठीक है ना, सेंधव, उसको मुंह में डालो तो उसके एक एक कण में सिर्फ एक स्वाद है, खारापन 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 खारापन, और कुछ नहीं, उसमें खट्टापन नहीं है, उसमें मिठास नहीं है, हर जगह एक स्वाद है। मिश्री की डली को मुंह में डालो तो उसमें हर कण में मिठास 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 है। उसी प्रकार तेरे कण कण में चैतन्य 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 स्वरूप है। कषाय करना तेरा स्वभाव नहीं है, तू जो कषाय कर रहा है वो मिलावट है। अब लोग मिलावटी खाना ज्यादा पसंद करते ना, शुद्ध भोजन पसंद नहीं करते। आचार्य ऋषि से किसी ने पूछा कि महाराज आप जो भोजन करते उसमें नमक नहीं होता, मीठा नहीं होता, कैसा लगता है? तो उनने कहा कि असली टेस्ट इसी में है बोले, और वो तो बनावटी टेस्ट है, ऊपर से डाला हुआ। वो जो आपको टेस्टी लग रहा है ना, वो किसका टेस्ट है? दाल का टेस्ट ले रहे हैं क्या आप? यह दाल के साथ मसाले और नमक और सारे मिश्रण का ले रहे हैं? तो मिलावटी चीज का टेस्ट लेकर आप मजा ले रहे हैं, लेकिन वो नादानी है। जो ज्ञानी होता है वो प्योर चीज पसंद करता है। अब जिसको डालडा की आदत पड़ गई, वो शुद्ध घी खाने पर बीमार पड़ जाए। इसीलिए जो अनादिकाल से विषय कषायों में उलझे हैं, उनको धर्म की बात सुनो तो फिर थोड़ा थोड़ा सिर चकराता है उनका शुरू शुरू में, लेकिन बाद में जैसे जैसे अभ्यास होता है तब लगता है कि असली चीज तो ये है जिसको मैंने आज तक छोड़ के रखा था, और अब मुझे बड़े भाग्य से गुरु कृपा से ये चीज मिली है। और गुरु कृपा के बिना मिलती भी नहीं वो चीज। किसको फुर्सत है कि आकर के आपको जगाए? सब अपनी मस्ती में मस्त है। तो दृष्टांतों से बहुत सारी बात खुल जाती है। यहां पर शेर का दृष्टांत दिया है कि जब वो भयंकर सिंह मृगराज हिरण को अपने मुंह में पकड़ लेता है, तब उसको जिस प्रकार कोई बचाने वाला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मरते हुए जीव को मरने से कोई बचा नहीं सकता। तो कितना सुंदर दृष्टांत था, चद्दर खींचने वाला दृष्टांत था, और चिन्हों से बता दिया कि तेरा चद्दर नहीं। उसी प्रकार गुरु बोलते हैं कि जिस शरीर को तू अपना रूप मान रहा है, दर्पण के सामने देखता रहता है, कितनी देर तक बैठकर समय खराब करता है बोले, और जब कोई फोटोज आते हैं तब फोटो में मैं कितना बढ़िया लग रहा हूं, तो फोटो में क्या दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा है क्या? और जो दिख रहा है उसको अगर आप मैं कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप दिखने वाली वस्तु को मैं समझ रहे हैं। और ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको दृष्टांत? ये भी एक नया दृष्टांत है फोटो वाला। तो उसको आप अगर मैं समझ रहे हैं, तो गुरु चद्दर खींच करके बोलते हैं कि चिन्ह देख, ये जड़ स्वरूप है और तू चैतन्य स्वरूप है। तो चैतन्य स्वरूप और जड़ स्वरूप क्या एक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर तू जड़ को चेतन कैसे समझ रहा है? और शरीर तेरा कैसे हो सकता है? क्या चेतन का जड़ हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से उसको समझाते हैं। तब जब चिन्हों से समझाते हैं, फिर एक दृष्टांत और देते हैं कि बोले तेरे को इतनी सब बातें समझ में नहीं आती, तो इतना तो समझ में आएगा तेरे कि मरने के बाद इसको जलाते हैं तब क्या तकलीफ होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिसको तकलीफ होती थी वो छोड़ करके चला गया, तो जिसको तकलीफ होती थी वो कोई और था, और जो जलाया जा रहा है वो कोई और है। और मरते समय वैद्य भी ऐसे नाड़ी पकड़ करके ऐसे देखता है, जब एक हाथ तो उसका नाड़ी पर रहता है, दूसरा हाथ ऐसे खाली रहता है, और फिर उस दूसरे हाथ से क्या करता है? आसपास सब लोग वैद्य को देख रहे हैं, वैद्य उसकी नाड़ी को देख रहा है, और फिर ऐसे क्या करता है? संकेत करता है वो। इसका क्या अर्थ है इस संकेत का? गए, है ना? ट्रांसलेशन ये होगा ना इसका, गए का मतलब क्या हुआ? बस ये भेद ज्ञान अगर जीते जी हो जाए तो कल्याण हो जाए। गए इसका मतलब जो चीज यहां पर है वो कोई और चीज है, और जो गए वो कोई और है। जाना सबको है, उसी की बात चल रही है यहां पर। तो ऐसे चिन्हों से जब उसको पहचान करा देते हैं वो समझ जाता है। भारत के सभी दर्शन आत्मवादी हैं, इसलिए आत्मा और शरीर भिन्न है इतना ज्ञान तो जैन मत में भी है, अन्य मतों में भी है, गीता में, उपनिषद में, सर्वत्र है। इसलिए आत्मा और शरीर भिन्न है इतना जान लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। ये एक बात ध्यान से सुनना, आत्मा और शरीर भिन्न है इतना जान लेना भी मामूली बात नहीं है, लेकिन इतना जान लेना भी पर्याप्त नहीं है, ये बात हम कह रहे हैं आपसे। इसके आगे भी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको पर जानना पड़ेगा, भेद विज्ञान की बहुत सारी श्रेणियां, ये तो बिल्कुल पहली स्टेप है, पहला कदम ही है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, दो अनुप्रेक्षाएं हो गई इसमें, मैं शरीर नहीं हूं एकत्व अनुप्रेक्षा हो गई, और शरीर मेरा नहीं है अन्यत्व अनुप्रेक्षा हो गई, शरीर अन्य है अन्यत्व आ गया। तो इतना अपन अगर गहराई में जाएं तो फिर संसार से पार हो जाते हैं। आचार्य आगे कह रहे हैं कि पहले तो कह दिया कि सिंह ने अगर हिरण को पकड़ लिया तो उसको कोई बचा नहीं सकता। अक्सर मुक्तागिरी के चातुर्मास में हमने ये बात